ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नाय नमस्कृत नरञ्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती वासु तथो जय मुदिरये। या प्रच्छन्न ईशा बोलिन आत्मक आत्मक उजागत ठीक है प्रभु जी। हाँ जगन फिर प्रचंड वेगत अभिभावत भूषाम भीतम प्रपत्रम परियति जत भवत मृत्यु प्रभावती अरणम तम इमहि। ज कच्चन अस्त बलिन अंत कर गात ज कंचन स बलिन आत्मकर गात प्रचंड कदा विधा बतौ भीषम प्रचंड गदभिया धवत भीषम भीतम प्रवंत परिपाति व्यद्दया भीतम प्रवन्नम परिपाति व्यद्दया नित्यं प्रभासरचं त्वमिमहि नित्यं प्रभावत्तयं त्वमिमहि। पुरी प्रभु चश्मा भूल के आया इसलिए सा ये हो रहा है। पुरी कश्चन कलिन अन्तकारगात काण्डकेशम् अवधात भीषम् काम प्रसत्ता प्रसत्ति प्रतिष्ठाम् और कहीं माता जी लोग जो कच्चन कोई ईसा परम नियंत बलिना अत्यंत शक्तिशाली अंतम उरागत मृत्यु लाने वाले काल रूपी विशाल सर्प से प्रचंड वेगात अत्यंत भयानक बल से अभिभावत पीछा करते हुआ भीषम निरंतर भीतम मृत्यु से डरा हुआ प्रपन्नम शरणागत परिपाती रक्षा करते हैं ईद भयात जिस भगवान को डर से मृत्यु साक्षात मृत्यु प्रधावती भाग जाती है अरणम हर एक को वास्तविक आश्रय तम उसकी इमही मैं शरण में लेता हूँ। भगवान निश्चय ही हर एक के ज्ञात नहीं है किंतु है जो अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली अतए यद्यपि कालरूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर हर किसी का पीछा कर रहा है और उससे निकलने के उद्यत है तथापि यदि वो इस सर्प से डरकर भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान उससे संरक्षण प्रदान करती है क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक को वास्तविक आश्रय है। पीछे पढ़िए, भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है किंतु है वो अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर हर किसी का पीछा कर रही है और उससे निकलने के उद्दात है तथापि यदि वो इस सर्प से डरकर भगवान का शरण में जाते हैं तो भगवान उससे संरक्षण प्रदान करते हैं क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उसकी शरण ग्रहण करता हूँ जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय है। पीछे पढ़िए, भगवान तात्पर्य शिला प्रभात की जो बुद्धिमान है वो इस समस्या को सबों के ऊपर एक महान तथा परम सत्ता है। यह महान सत्ता निर्देश व्यक्तियों को उत्पातों से बचाने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। जैसे भगवद गीता में पुष्टि हुई है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्। भगवान दो कारणों से दुष्कृति का संहार करने तथा अपने भक्तों को रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। गजेंद्र ने इनके ही शरण में जाने के निर्णय लिया, ये बुद्धिमानी है। मनुष्य को इस पुण्य पुरुषोत्तम भगवान का जानना चाहिए और उनके शरणागत हो जाना चाहिए। भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमें यह उपदेश देने आते हैं और किस तरह सुखी रखा जाए। केवल मूर्ख तथा धूर्त ही बुद्धि होते हुए भी इस परम सत्ता परम पुरुष को नहीं देख पाते। सुक्ति मंत्र में कहा गया है कि भीष्मात् वातो पवते भिषीदति सर्ज भीष्म सपनात् अग्नि संरक्ष मृत्यु धर्महवीति पंचम। अर्थात भगवान के भय से ही वायु बहती है, सूर्य उष्ण तथा प्रकाश के वितरण करता है और मृत्यु हरेक को पीछा करता है। इस प्रकार एक परम नियंता ही जैसे भगवद गीता से पुष्टि होते हैं, मज्जक्ष सेना प्रकृति सुयाते सतराचरम, यह भौतिक जगत परम नियंता के कारण ही इतना अच्छी तरह कार्य करता है। अतएव कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि किसी परम नियंता का अस्तित्व है। यह नहीं, यह परम नियंता साक्षात कृष्णा के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में तथा भगवान रामचंद्र का रूप में उपदेश देने तथा अपने उदाहरण से भगवान के शरण में जाने की विधि बताने के लिए प्रकाश होते हैं। फिर भी जो लोग अदम है वो उनके शरण में नहीं जाते। नमांग दुष्कृत मुरा प्रपतंते नराधमा, भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहता है, मृत्यु सर्वो हर क्षम में सर्वभक्षी मृत्यु है। अतो मृत्यु अहो प्रतिनिधि है, जो प्रत्येक देहधारी जीव से सबको छीन लेती है। कोई यह नहीं कह सकता मैं मृत्यु से नहीं डरता, यह झूठी धारणा है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, किंतु जो भगवान के शरण ग्रहण करता है वो मृत्यु से बच सकता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि क्या भक्त नहीं मरता? इसके उत्तर यह है कि निश्चित रूप से उसके शरीर त्यागना होना, क्योंकि शरीर भौतिक है, किंतु अंतर इतना ही है कि जो कृष्ण के पूर्ण शरण में जाता है वो कृष्ण द्वारा रक्षित होता है। उसका वर्तमान शरीर अंतिम शरीर होता है, उससे फिर से भक्ति शरीर धारण करने के मृत्यु के अधीन नहीं होना होता। माँ इसका आश्वासन दिया गया है, तत्तक्ता देहो पुनर्जन्म नेति मामे चषो अर्जुन, भक्त अपना शरीर त्यागने के बाद भौतिक शरीर को नहीं पाता, अपितु यह भगवत धाम आपुर जाता है। हम सदा संकट में रहते हैं, क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं कि गजेंद्र को मृत्यु से भयभीत था, हरेक को मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि हरेक व्यक्ति काल रूपी घड़ियाल द्वारा पकड़ा जाता है, उच्चे और किसी भी क्षण मर सकता है। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यह है कि भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करना का प्रयास किया जाए और इस संसार में जीवन संघर्ष से बचा जाए, जिसमें मनुष्य को बारंबार जन्म लेना और मरना पड़ता है। इसी ज्ञान का पोषना जीवन का परम लक्ष्य है। ज्ञान सिमरान देश ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मृतांगी श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवान्त समिति नमिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभान सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वंचा कल्पतरु कृपा सिंधु वच पतितना पवन वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 8 और अध्याय 2 श्लोक नंबर 33, यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष का बारे में बताया हुआ है। गजेंद्र संकट में पड़ा है, लेकिन जो ये कथा है ये कथा इस कल्प के नहीं है। हाँ, इस कल्प का ही है, लेकिन प्रारंभ में मनु का 14 जो कल्प होते हैं उसी कल्प का एक कथा है, बहुत पुराना। आप लोग पहले पढ़ चुका है, जो ये कल्प का प्रारंभ में बहुत सुंदर एक त्रिकूट पर्वत था, और उसी पर्वत का वर्णना भी इसमें दिया है। इतना सुंदर था वो पर्वत और उसी पर्वत का बीच में बहुत बड़ा एक सुंदर तालाब था और तालाब में इतना सुंदर पानी था और वहां पर बहुत सारे कमल खिला हुआ था और उसी पर्वत का बीच में बहुत बड़ा एक हाथी। वो हाथी उनका परिवार के साथ बहुत विशाल परिवार बना चुका था, लेकिन जब परिवार बड़ा हो जाता है तो उसका अहंकार भी बढ़ जाते हैं, और उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसको देखने से जंगल के अंदर जितना ही पशु पक्षी सब रास्ता छोड़ के जगह छोड़ के भाग जाते थे। इसीलिए वह कई राजा बन चुका था। राजा बनने के बाद उसका मन में एक दिन ऐसा भावना आया, सब जंगल का तोड़ ताड़ के वेद जो कुछ भी था झाड़ तोड़ ताड़ के वो बहुत परेशानी होते क्योंकि इतना तोड़ने के बाद उसका शरीर थोड़ा गर्मी आ गया। गर्मी आने के बाद तालाब के पास आए, तालाब के आके बाद पूरा परिवार को उतारा, तालाब में पूरा परिवार को उतार के उसने बहुत पानी को सबका परिवार को जितना था सबको सूर से स्नान कराया, खुद भी बहुत मस्ती से स्नान किया क्योंकि उसको अहंकार था बहुत कि मेरे ऊपर मेरा बड़ा और कोई नहीं है। ऐसा करते करते लेकिन कितना भी अहंकारी हो मृत्यु एक दिन उसको ग्रास करेगा। शिला प्रभुपाद जी यह पर तात्पर्य में बता रहा है कि देखो है कितना भी बड़ा हो कोई भी हो मृत्यु से डरना चाहिए, लेकिन जो नास्तिक है मूर्ख है वो मृत्यु से नहीं डरते है। तो गजेंद्र को अहंकार के कारण वो बहुत बड़ा बलशाली है, वो इतना मस्ती में मस्त हो गया। हठात वहां पर एक बहुत बड़ा घड़ियाल था, वो घड़ियाल ने आके उसको पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ लिया बल तो है ही है, वो बहुत कोशिश करते 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 कोई सलता गजेंद्र के साथ और उसके साथ लड़ाई होना चालू हो गया। चालू होने के बाद कोई साल बीत गया लेकिन कोई किसी को पीछे नहीं। अभी धीरे धीरे जो भी हो हस्ती है आपका ऊपर चलने वाला प्राणी, उसका शक्ति तो पानी में थोड़ा क्षीण होने वाला ही है और घड़ियाल है पानी का, उसको शक्ति और बढ़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ धीरे धीरे उनका जितना इष्ट मित्र परिवार जो कुछ भी था वो सब एक एक करके चला गया, कोई और नहीं बचा। नहीं बचने का कारण अभी वो किसका शरण में जाए क्या करे, तो अभी शरण में आया भगवान को। यही कथा आज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहा है, लेकिन यही कथा सुत गोस्वामी 60,000 ऋषियों को सामने सुनाया था। आज वही कथा हम लोग यहाँ पर प्रभुपाद जी द्वारा आपका सामने प्रस्तुत कर रहा है। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वही मैं आपको आधा आधा भाषा मतलब मेरा शरीर तो बंगाल का है और रहता है महाराष्ट्र में, तो बंगाल के भाषा और महाराष्ट्र के भाषा मिक्सचर तो हो चुका है। और क्या हुआ, जब चलते फिरते हैं तो हिंदी बोलना पड़ते हैं, तो ऐसा कंडीशन हो गया कि मैं अच्छा हिंदी भी नहीं बोल सकता हूँ और अपना बांग्ला भाषा वो भी भूल चुका हूँ और मराठी थोड़ा थोड़ा बोलता है, इसीलिए कोई भी भाषा शुद्ध नहीं बोल सकता। तो आधा आधा भाषा में जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आप समझने का कोशिश करें क्योंकि प्रभुपाद जी खुद बोल रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं काल रूप से है, क्योंकि काल मृत्यु हमारा पीछे पड़ा हुआ है, किसी क्षण भी हमारा मृत्यु है। आप लोग बोल सकते हैं ऐसा मृत्यु को देखे कौन सा व्यक्ति ये संसार छोड़ के भाग गया, किसका ध्यान में है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध जब राजपुरी में रहता था, राजपुर में रहने के बाद वो एक दिन बाहर निकले तो क्या देख रहे हैं, एक व्यक्ति को
चार पांच लोग उठा के लेके जा रहा है। तो लेके जाने के बाद राम नाम सत्य कृष्ण नाम सत्य ये बोलते बोलते जा रहा था। उस टाइम उसने पूछा माहुत को, ये भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है? बोलते कुमार ये आदमी चला गया। बोले आदमी चला गया, कहाँ गया? बोलते तो मर गया। अरे कैसा मर गया, क्या बात है? बोले कुमार ये संसार में जब आया सबको ऐसा मरना पड़ता है, तुमको भी एक दिन ऐसा मरना पड़ेगा। गौतम बुद्ध का झटका लग गया। हाँ मुझे मरना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ हाँ कुमार तुमको मरना ही पड़ेगा। जब दूसरी तरफ आगे जा रहा था तो देखता है एक व्यक्ति ऐसा लाठी पकड़ के चल रहा है और गिर पड़ा है। अरे माहौत वो क्या हो रहा है? कल तो बुढ़ापा हो गया, वो तो जरापा आ गया, वो चलने का उसका ताकत नहीं है। उसका शरीर देखो कुमार, ये जो उनका शरीर है देखो उनका बाल पक गया। कुमार तुमको भी एक दिन ऐसा बाल पकेगा। देखो उनका दांत नहीं है, तुम्हारे भी ऐसा एक दिन कंडीशन होगा कि तुम्हारा भी दांत गिर जाएगा और देखो ये सारे कमरा तुम्हारा ढीला हो जाएगा। उसका दूसरी झटका लग गया, हा? मुझे ऐसा होगा? तीसरी अब जब दूर में गया, ये माता जी बहुत चिल्ला रहा था, बहुत चिल रहा था, अरे क्या करूं, क्या हो गया, क्या उनका बेटा बहुत बीमार पड़ गया, अभी बीमार के कारण बहुत चिल्ला रहा है, माँ भी चिल्ला है, वो भी चिल रहा है, ये क्या हो गया, ये क्यों चिल्ला रहा है, इसका क्या कारण है? बोलता है इसका बहुत बीमारी पकड़ गया, बहुत बीमार। हाँ ऐसा है क्या कुमार? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी एक दिन ऐसा ही होगा। बुद्ध ने बोला रथ को घुमाओ, रथ को घुमाओ, आगे और मत बढ़ो। वो घर में आपोस आया। आने के बाद उसी रात को उसने संसार छोड़ के चला गया, हाँ? भगवान का भजन करने के लिए। और आखिर में वो भगवान का भजन सक्सेसफुल हो गया, बाद में भगवान को कृपा भी प्राप्त हुआ। तो ऐसा झटका गौतम बुद्ध को लगा। लेकिन हम लोग देखते हैं हमारा सामने कितना लोग मर रहा है, कितना लोग, हमारा ऐसा झटका कभी लगा है क्या, किसी को लगा है? लेकिन मैं तो बोलूंगा इस्कन का भक्त को लगा हुआ है। इसीलिए संसार का सारे सुख सुविधा छोड़ के प्रभु जी का शरण में आया है। चाहे कोई भी हो, आप लोग उनको सोचना चाहिए जो मृत्यु एक दिन हमको घड़ियाल का रूप में, काल का सर्प का रूप में एक दिन हमको ग्रास करेगा, ये कोई नहीं हमको बचा सकता है। तो प्रभुपाद जी हमारा बता भाई, देखो मृत्यु काल से हमेशा डरना चाहिए। जब तक मृत्यु से हम नहीं डरूंगा तब तक भगवान का भक्ति हमारा धीरो नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, पहले सोचना चाहिए हमारे पास समय नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारा मृत्यु कब होगा? परीक्षित महाराज जानते थे, कैसे जाना? वो भी ब्राह्म साप प्राप्त हुआ तभी तो उसको मालूम पड़ा। लेकिन हमारे ऊपर ऐसा तो कोई साप प्राप्त नहीं हुआ जहां मृत्यु के बारे में जान सके। एक बार आपको क्या बताओ, नारद मुनि जैमिनी मुनि को मिला तो उसी संवाद में बताता है जैमिनी नारद मुनि, ये बहुत बड़ा दुख है, नारद का ही शिष्य था जैमिनी मुनि। तो बोलता है गुरुदेव क्या दुख है, आप थोड़ा बताइए ना मुझे, दुख का प्रकट करे। नारद मुनि बोलते हैं मैंने एक सेला बनाया, लेकिन सेला को उद्धार करने के लिए मैं इतना कोशिश किया, लेकिन आखिरी में उसको सपोर्ट के लेके आना पड़ा। तो जयमणी मुनि पूछता है कि आप ऐसा कौन सा चला बनाया? बोलते देखो भाई मैं एक भी धाराधाम में मृत्यु लोक में गया, तो मृत्यु लोक में जाने के बाद मैंने देखा एक सुंदर लड़का है, तो वो लड़का को देख के मुझे इतना अच्छा लगा, उनको रूप चेहरा कितना सुंदर है। तो मैं उनके देख के बोला भाई तुम एक काम करो मेरा चेला बनो। तो नारद मुनि इच्छा से उनको चेला बनाया और बोलते हैं देखो ये संसार सब कुछ अनित्य है, ये छोड़ के एक दिन हमको सबको जाना है, जाना ही होगा, लेकिन तुम भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करने से ये संसार से तुमको मुक्ति मिल जाएगा और भगवान का धाम में जाओगे। इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, संसार कर, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ ही चलो ना, तुमको मुझे को बहुत अच्छा लगेगा, लग रहा है, और तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। बोलते महाराज अब तो जो कुछ भी बोला सही बोला है, लेकिन अभी तो मेरा उम्र कितना ज्यादा ज्यादा 16 साल हुए है, लेकिन अभी तो मेरे तो भोग विलास की इच्छा है, मुझे थोड़ा शादी भी बनाना है। नारद मुनि बोलते ठीक है, इतना तुमको कमाई देता हूँ, शादी बनाओ, कुछ दिन भोग करो, बाल बच्चा हो जाए, फिर मैं तुमको लेने के लिए आया आऊंगा। नारद मुनि चला गया। 5-6 साल के बाद आए, आने के बाद बाल बच्चा भी हो गया है, और सब कुछ सुखी संसार है, नारद मुनि का कृपा है। नारद बोले हो गया ना सब, अब तुम मेरे साथ चलो। महाराज बात तो आपने ठीक कहा, जाना तो चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, अभी जो बाल बच्चा बड़ो हो गया, इनका मैं छोड़ के मैं कैसा जाऊं, इसको भी पोषण तो मुझे करना चाहिए। बोलते ठीक है, 8-5 साल तुमको मौका देता हूँ, 10 साल इनको शादी बनाओ, शादी बनाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक करके फिर मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। नारद मुनि और 10-15 साल के बाद आए, आके देखता है लड़का तो शादी भी हुआ हो चुका था, उनका भी और बाल बच्चा होगा, परिवार बहुत बड़ा हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद नारद मुनि, अरे भाई और क्या बाकी है तुम्हारे के लिए, बार बार मैं आ रहा हूँ, बार बार आ रहा हूँ, और कितना दिन आते रहूंगा। उसे देखिए महाराज आपका बहुत खास है, लेकिन अभी देखिए नाते इसको तो कुछ भी मैं, अभी मैं बुढ़ा हो गया, अभी संसार में कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन ये बाल बच्चों का थोड़ा ये जो नाती होना, इसको थोड़ा देखने से ये संसार का काम आस्था ढंग से कर सकता है। नारद मुनि बोलते ऐसा है क्या, बोलते ठीक है और कुछ दिन के बाद मैं आऊंगा। इतना में नारद मुनि चला गया, वो बुढ़ा गुजर गया। बुढ़ा गुजर जाने के बाद फिर नारद मुनि आया, देखा तो कोई नहीं है, वो बुढ़ा क्या हो गया, देखता है घर में बहुत बड़ा कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता है। नारद मुनि समझ गया वही बेटा हमारा चेला कुत्ता बन गया है, अभी कुत्ता को बोला इधर आओ, तो कुत्ता पास में आया, नारद मुनि के चरण में गिर पड़े, थोड़ा पानी का छिटका दिया, उसका बोली चल रहा है भाई तुम कैसा मोह में फंसा हो है, और तुम कुत्ता हुआ ना, अभी तुमको मैं कुत्ता ही तुमको लेके जाऊंगा। कुत्ता बोलता है हे महाराज आप ठीक है, इतना बड़ा परिवार कैसा मैं पालन करूं है, कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन अभी कुत्ता तो हूं मैं, लेकिन उससे चौकीदारी तो मैं कर सकता हूं है। नारद मुनि हंस पड़े, अरे मूर्ख जीव कितना तुम लोग माया में फंसा रहोगे, तुमको याद नहीं है तुमको, फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा कृपा किया हूँ है, तुमको लेने के मैं बार बार आता हूँ, जय मुनि की मुनि को दुख का प्रकट करता है, मेरे दुख ये है कि जो मैं कुत्ता को भी छोड़ के चला गया, उनका वाणी मैं रख दिया, लेकिन वो कुत्ता मरने के बाद बहुत बड़ा एक अजगर सर्प बने, तो मैं फिर दोबारा उधर आए, उस सर्प को देखा तो कोई नहीं है, बाद में हमारे ध्यान लगा के देखता है वो खेत का अंदर बहुत सर्पों के बन के वो बिल जो है उसके अंदर रहता है। नारद मुनि वहां पर गया, अरे भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो है, अभी तुम सब और छोड़ना नहीं है तुमको, मैं लेके ही जाऊंगा। सर्प बोलता है महाराज आप जो कुछ भी ठीक किया, देखिए खेत के अंदर कितना सारे फसल है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन फसल को तो मैं रक्षा करता हूँ है, चूहा खाए जाएगा तो ये लोग कैसा क्या खाएंगे। नारद मुनि बोलता है इस बार तुमको और छोड़ के नहीं जाएगा, और काल कैसा ग्रास करता है ये भी तुमको सिखाऊंगा है। नारद मुनि गया उनके परिवार के, अरे भाई इसी रास्ता से मैं आ रहा था, तुम्हारा खेत में बहुत बड़ा एक सर्प है, कोई भी तुम्हारा बेटा अगर जाएगा सर्प तुमको काट डालेगा है, तुम लोग देखा है क्या, सब बोलते कहा है, चलो थोड़ा दिखाओ, कोई डंडा लाठी सब पकड़ के जब खेत में गया, ले गत्तों के अंदर मैंने इसके अंदर खोदा, खुदो उसको खोदा, खोदे देखने का बहुत बड़ा सर्प है, सब लोगों ने वो लड़का मारा बेटा मारा, सब लोगों ने नाचू पिटके 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 उसको मार डाला है। तब नारद मुनि उसको सूक्ष्म आत्मा को तो आके चरण पर गिरे, महाराज मुझे को क्षमा करे, अरे पागल तेरे को मैं पहले बताया था ये संसार का जितना ही लोक है ये समझ लेना कि एक काल रूपी सर्प उसको एक दिन ना एक दिन सबको ग्रास करेगा, इसलिए समय के अनुसार भगवान का शरण में जाना चाहिए, समय के अनुसार भगवान का शरण में नहीं जाए तो भगवान उसको कालसु रूपी सर्प आके उसको ऐसा तकलीफ देगा, ऐसा तकलीफ देगा, ऐसा तकलीफ देगा कि उसको कभी तुम सहन नहीं कर पाओगे, जो दशा आज तुम्हारा हुआ है। हाँ, तो नारद मुनि ये दुख प्रकाश करते हैं किसको? जयमुनि ऋषि को। ऐसा ही आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सारे साहब स्कंद के भक्त है। स्कंद के भक्त होने के नाते मैं पहले बताया कि आप लोगों को मृत्यु नहीं होगा। कैसा मृत्यु नहीं होगा कि पूर्वज जी का शरण में जो आते हैं, पूर्वज जी का शरण में जो आया क्योंकि आप लोग सारे सुख सारे सुविधा सब कुछ छोड़ के भगवान का शरण में आए, आए कि नहीं? संसार में कोई किसी का, लेकिन इसी भागवत में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो भक्ति हम लोग करते हैं, लेकिन भक्ति के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार रहे है? तो उसको भक्ति पूर्ण नहीं होता, उसको भक्ति पूर्ण नहीं होता। हमारा भक्ति के अंदर यही भावना होना चाहिए, हे प्रभु कई जन्म से भटक रहा हूँ, जीव नहीं 84 लाख जोनि प्रभु भटक रहा हूँ, अभी तुम्हारा शरण में आया हूँ, तुम कृपा करके तुम्हारा शरण में मुझको रखो। हाँ, ऐसा भावना लेके जब हम प्रभु जी का चैतन्य महाप्रभु का याद करके गुरु जी का चरण में नतमस्तक होकर सारे जन्म का पाप को चिंतन करते हुए उनका शरण में आकर आंखों का दोबुन पानी उनका चरण में गिराए तो सारा जिंदगी का पाप का हमारा प्रायश्चित हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कलिक इसी युग में हम कुछ अन्याय करे तो सरकार हमको दंड देता है। दंड का प्रायश्चित किस में होता है? पैसा से। पैसा से जेल से छूट का कहा से बस पैसा उसको मेन है, लेकिन पाप का प्रायश्चित होता है सब आंखों का पानी से, दूसरे से नहीं। वो पैसा से आप प्रायश्चित तो नहीं कर सकते हो। जो मैं कितना भी बड़ा पाप किया हूँ और कोई लाखों रुपया गुरु जी को चरण में दिया हूँ, पैसा है उसके आपको पाप का प्रायश्चित तो नहीं होता। हाँ, इसीलिए शास्त्र कहता है गुरु का चरण के पकड़ के और कोई जन्म का पाप का जो याद करके उनका शरण में गिर कर क्षमा मांगे तो अवश्य ही गुरु जी अवश्य ही कृपा करेगा। इसलिए शास्त्र कहता है नसीब में जो है वो सबको भुगतना पड़ेगा वो आदत, लेकिन आदत जो बदलता है नसीब भी उसका बदल जाते हैं। हमारा जितना पुराना आदत है गुरु जी का चरण में आकर हम उसको भूल जाए तो क्या होगा? उसको भूल जाने से गुरु जी का चरण कर पकड़ के जब हम बोलेंगे जो हमारा आदत को धीरे 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 उसको त्याग देना चाहिए। तो हमारा आदत क्या है? कोई कोई व्यक्ति हम लोग कितना कोई नेशा में था है? कोई जुआरी था, मच्छी मटन खाता था, सब कुछ करके आप हमारा आदत धीरे धीरे बदल गया है। बदल जाने के बाद आप प्रभु जी का शरण में आया तो सबका नसीब भी बदल गया है, गया कि नहीं? यहाँ पर लक्ष्मीनारायण प्रभु है का पता नहीं, एक बार लक्ष्मीनारायण प्रभु का गांव में हम प्रचार करने के लिए गया था। तब लक्ष्मीनारायण प्रभु का गांव में जब प्रचार करने के लिए गया तो जब देखा होगा परिस्थिति तो लक्ष्मीनारायण को हम लोग उठा के लेके आए है? और यहाँ पर अच्छा भक्त बने, आप देखो अभी वहाँ पर प्रचार भी करते है। तो वही लक्ष्मीनारायण प्रभु वहाँ पर रहते तो कितना आदोष में फंसा होकर रहता था, लेकिन वहां से आया उसका आदत बदल गया, उसका नसीब भी बदल गया। कहा ऐसा ही भक्त लोगों को सब भक्त बनने के बाद अपना आदत भी बनना चाहिए। तो कितना भी हम लोग खराब परिवार में जन्म लिया, कितना भी दुखी था, कितना भी कुछ भी था, लेकिन हमारा नसीब बदल गया है क्योंकि पूर्वज जी ने हमको सहारा दिया। हम लोग पूर्वज जी का शरण में आया है, पूर्वज जी का शरण आने से हमको मृत्यु कभी त्रास नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं तो भक्तों की मरता नहीं है, हाँ भक्त मरता है। एग्जाम्पल देते हैं कोई कोई जगह पर, जैसा चूहा बिल्ली पकड़ता है, बिल्ली चूहा को पकड़ता है, लेकिन चूहा को जो पकड़ता है तो बिल्ली को आप काल समझो है? तो चूहा को जब पकड़ते हैं तो चूहा क्या करता है, एकदम त्राही 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 उसको बच्चा कुछ कुछ कर बांसने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वही चूहा उसको हाथ पैर तो है लेकिन उनको अपना बच्चा को पकड़ नहीं सकता है। वो बच्चा किससे पकड़ता है, मुंह से पकड़ता है बच्चा को, वो मुंह पर लेके इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर घुमा के लेके जाता है कि नहीं, लेकिन वो बच्चा क्या सोचता है, एकदम स्वर्ग सुख अनुभव करता है, उसका मुंह का ऐसा ही पकड़ने का तरीका है। तो भगवान भक्तों को ऐसा ही रक्षा कर सका है, मृत्यु के टाइम उनको कोई तकलीफ नहीं होने देते है। इसीलिए हम लोग धरती पर आने के बाद जो 84 लाख धुनी हमको प्राप्त हुआ, इस 84 लाख धुनी को प्राप्त होने के बाद अभी हमको मिला मनुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म को हमको सदुपयोग करना चाहिए है। सदुपयोग करने से कैसा, देखिए आप लोग श्यामानंद प्रभु का जीवनी कोई पढ़ा होगा, श्यामानंद प्रभु, तो श्यामानंद प्रभु ने कितना बड़े घर का एक लड़का था है? उसको ज्ञान हुआ, प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, मूर्खों का ज्ञान नहीं होता, मूर्ख कभी नहीं सोचता है कि मैं मरूंगा, लेकिन जिसने सोचा मृत्यु मेरा बाल पकड़ के है, किसी क्षण मुझे मृत्यु हो सकती है, किसी क्षण, ऐसा जिसने सोच लिया उसने संसार का सारे सुख तिलांजलि देके भगवान का चरण में आके भगवान का नाम कीर्तन करते रहते है। हमारा सनातन गोस्वामी पाद एक जगह पर लिखते हैं है, जो वृंदावन में आकर कृष्ण का शरण में जो एक बार कृष्ण का नाम जिसने अपनाया, उसके वो बड़ो बिल्डिंग में जो सुख है उससे ज्यादा सुख उसको मिलता है, वो पेड़ का नीचे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे, वो जाप का इतना शक्ति है जो सारा सुख को उसको तुच्छ बना देता है, कृष्ण नाम का इतना महिमा है। इसीलिए हम लोग भक्तों जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहे, हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहे, तो सिर्फ कृष्ण का चिंतन करने से हमारा यही सुख अच्छा लगेगा, भौतिक सुख हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेंगे। तो हमारा श्यामानंद प्रभु का ही यही दशा हुई। श्यामानंद प्रभु जब कोई भक्तों का जीवनी इगड़ा चप चरित्र पड़ा तो उसका ज्ञान आया, अरे है मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये संसार सुख में, ये संसार सुख में फंसा हूँ, मैं कैसा भगवान का शरण में जाओ। वो रात को रात सब कुछ छोड़ के चलाया मायापुर, मायापुर आने से वहां से कोई लेटर लेके उसने आया वृंदावन, वृंदावन आने के बाद उसको थोड़ा सा सेवा मिला है, उनको गुरुदेव ने उसको थोड़ा सा सेवा दिया, कौन सा सेवा दिया, तुम जाओ सेवा कुंज में झाड़ू लगाओ, सेवा कुंज में झाड़ू लगाओ। तो झाड़ू लगाते 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 एक दिन राधा रानी का इच्छा हुई, जितना बड़े घर का लड़का साफ अभिमान छोड़कर इतना तुच्छ सेवा कर रहा है तो उनको मुझे दर्शन देना चाहिए। तो राधा रानी आकर बहाना करके उनका चरणों का नुपुर उसी कुंजों में छोड़ के चला गई। जब कुंजों में छोड़ के चला गया, कुछ दूर जाने के बाद राधा रानी बोल रहे हैं ललिता को, अरे प्यारी मेरा जो नुपुर है मैंने वो सेवा कुंज में गिर पड़े, तुम जाकर लेके आओ। ललिता ने आए आके देखता है कि बुड्ढा झाड़ू लगा रहा है, लेकिन पहले उसको नुपुर उसको मिल चुका था, वो नुपुर का इतना तेज था वो नुपुर अपना खींचा में रख लिया उसको, और जब नुपुर उसने कस किया उसमें भाव होने लगे, गला कंठ रुदने लगा है, शरीर कांपने लगा, तो उसने सोचा है नुपुर का कोई दैविक शक्ति है, कोई भी दैविक शक्ति नुपुर में जरूर है। इतना में ललिता के पूछ रहा है, भाई इधर तुम्हारा का कुछ मिला है, तो हाँ मिला है, तो क्या मिला, जो एक नुपुर मुझे को मिला है तो दे दो। तो किसका नुपुर है, बोलते हमारा रानी का, तो तुम लोग यहाँ पर कब आए, कैसा यहाँ पर, ये तो दर्जा तो बंद रहता है, रात को कैसा आए, बोले हम लोग रोज आते हैं लेकिन देव दो ना उसको क्या, तो कौन है रानी, बोला है कोई भी तुम दे, उतना पूछने का क्या जरूरत है। बोले तुम्हारा रानी तुम लेकर ऊपर भाग जाओगे, इतना कीमती सीधा मैं तुमको नहीं दूंगा। लड़ते चला गया, जाके राधा रानी को बोला, नूपुर तो देने वाला नहीं है। राधा रानी को तो वही इच्छा था कि श्यामानंद को दर्शन दे। राधा रानी आए, आके बोलता है भाई वो नूपुर हमको दे दो ना। किसका नूपुर है? मेरा नूपुर है। कौन है तुम, इतना रात को इधर कैसे आते हो? तो राधा रानी हंस पड़े। राधा रानी बोले अगर श्यामानंद तुम जिसके लिए संसार का सुख तिलांजलि देकर आज वृंदावन में आकर इतना ठंडी में है जो झाड़ू लगाते हैं, ऐसा भक्त को छोड़ के मैं वैकुंठ में कैसा रहूं? गोलोक वृंदावन में जो गोलोक वृंदावन छोड़कर आज तुमको दर्शन देने के लिए आया है, है? तुम मुझे दर्शन कर लो। तो श्यामानंद प्रभु जब देखा साक्षात राधा रानी है, तो श्यामानंद प्रभु ने पूछा हे राधे जब तुम मुझे पर इतना ही कृपा किया हो तो हमारा प्रभु जी को थोड़ा दर्शन दो। जब कृष्णा को याद किया कृष्ण भी आके खड़ा हो गए और श्यामानंद प्रभु राधा और कृष्ण का चरण में लौट पड़े। तो एक कहने का मुझे मतलब ये है जो हम लोग संसार का सुख कुछ करके जब प्रभुपाद जी का शरण में आए तो आप लोगों का भगवत कृपा कृष्ण का कृपा तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात आप हमको याद रखना जरूर है जो संसार का सुख जब तुच्छ करके आए और आने का बाद मंदिर में आने का बाद जब हम भोग विलास में फंसा रहे है तो भोग करना है लेकिन कैसा है। हमारा चैतन्य महाप्रभु ने जैसा आप लोग रघुनाथ का जीवन चरित्र पढ़ा होगा तो रघुनाथ को महाप्रभु ने उपदेश दिया कि यथाजोग्य विषय भोग अनासक्त है। तुम विषय को भक्त करो लेकिन उसके अंदर कोई आसक्ति मत रखो। देखिए हम लोग प्रचार करने के लिए क्या क्या नहीं कुछ करते हैं, अच्छा कपड़ा अच्छा घड़ी जो कुछ भी है सब कुछ अच्छा अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार करने का ये मतलब नहीं उसके हम लोग अटैच रहे। प्रभुपाद जी का कहना है उसमें अटैच नहीं रहना है, ये सिर्फ भगवान का सेवा के लिए और भगवान को सेवा करने के हमारा त्याग भाव बहुत ही होना चाहिए। बहुत त्याग भाव जब तक नहीं होगा तब तक भगवान कृष्ण हमारे पर प्रसन्न नहीं होगी। आप लोग सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र सभी लोग जानते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी देखो साधना मार्ग में कई कई जगह पर हम बोलते हैं तो बोलने के बाद बोलता है इस युग में संभव पर नहीं है, यह पर इस टाइम संभव पर नहीं है। अरे भाई भक्तों के लिए हर टाइम संभव पर है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम तो पूरा संसार का सुख तिलांजलि दिया और यहाँ पर हम सुख का पीछे पड़ा रहे तो भगवान का कृपा हमको कैसा मिले? उद्देश्य क्या है? भगवान का कृपा प्राप्त होना और मनुष्य जोनि से हमको छुटकारा पाके भगवान का शरण में जाना, यही तो हमारा मुख्य उद्देश्य है ना। और कोई उद्देश्य है हम लोगों का? दूसरा का उद्देश्य है धर्म अर्थ काम मुख्य, ऐसा कोई उद्देश्य है भक्तों का? आप लोगों का होगा नहीं है? जिसका भी हो होना नहीं चाहिए, और होने से क्या होगा? पुनरापि मुश्किल भावो, एक बात है कि नहीं है? तो पुनरापि मुश्किल भावो, इतना सब कुछ छोड़ के आके दोबारा हमको नरक का रास्ता में खटखटाना पड़ेगा, इसीलिए त्याग बहुत ही आवश्यकता है। त्याग के बिना भगवान का कृपा मिलना मुश्किल है। सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र भाव जानते हैं? उतना तो कितना टाइम, कितना टाइम और 10 मिनट। अच्छा तो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में आए, वृंदावन में आने के बाद देखिए बुद्ध शरीर चल नहीं पा रहा है, चल नहीं सकते हैं, फिर भी गोवर्धन परिक्रमा के लिए रोज जाते थे। इतना त्याग करने के बाद फिर रोज उसका मन, अरे मैं तो सब कुछ त्याग दिया हूँ और इतना भजन इतना साधन करने का क्या जरूरत है? मंदिर में आने के बाद साधन करना, प्रभुपाद जी ने हमारा साधना का इतना सुंदर पद्धति दिया है, जैसा मंगलारती, संध्या आरती, गुरु पूजा, ये सब हमारा साधना है। ये साधना हम मिस करें तो हमारा धीरे धीरे बर्बाद ही होगा। तो सनातन गोस्वामी क्या साधना था? रोज माला जप करना, आज जप करते करते गोवर्धन परिक्रमा करके फिर लौट के आना, भगवान कृष्ण देखते हैं। ये बुड्ढा और कितना दिन ऐसा करेगा? रास्ता में उसको रुक दिया, रास्ता में रुक देने के बाद सनातन तुम मेरा बात सुनो, क्या तुम आओ आगे मत बढ़ो, तुम आओ आगे मत बढ़ो। क्या प्रभु क्यों क्या हुआ? तो तुम चल नहीं सकते हो और कितना दिन तुम ऐसा करते रहोगे? सनातन उत्तर देता है, प्रभु आप परमपिता परमेश्वर भगवान है और मैं कौन हूँ? एक मनुष्य शरीर हूँ। तो मनुष्य शरीर होने के नाते हमको काम है साधना करना, भजन करना। आप भगवान हो, मुक्तिदाता जो भी हो, मुझे को आप शरीर दिया है तो मौका दो, मुझे थोड़ा साधना करने के लिए साधना से मुझे मत रुको। तो देखो भगवान साक्षात के बोल रहा है, फिर भी भक्त बोल रहा है मुझे को साधना से मत रुको। और हम लोग को उनको ऐसा भगवान के सामने खड़ा हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा हम लोग उनको दशा? तो सनातन को सामने भगवान खड़ा हो गया और खड़ा हो बोलते मुझे साधना से मत रुको, तुम भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, है? लेकिन भगवान का जगह पर आ मनुष्य शरीर हूँ, हमारा मनुष्य शरीर के ऊपर मुझे रहने दो, है? जितना दिन शरीर है उतना दिन मुझे को साधन से तुम वंचित मत करो। बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन सनातन नहीं समझे। आखिर में भगवान देखता है तो नाचर बंदा है, तो मैं क्या उपाय करूं? बाजू में था एक पत्थर, है? पत्थर लाके दिया, वहां पर चरण रखे, बांसुरी का चिन्ह रखे, अरे गाया का जाओ सनातन तुम कुठी में जाओ, इसको रोज परिक्रमा करो, इतना तुम तो मना करो, है? इतना तुम तो मना करो। फिर उसी का परिक्रमा करते थे। अभी भी यो पत्थर आप लोग वृंदावन में जाए तो राधा दामोदर मंदिर में है। तो ऐसा ही साधना, देखो साधना महाप्रभु ने हमको सिखाए, चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाए। जब गंभीरा में महाप्रभु रहते थे ना, तो सन्यासी था, तो जगदानंद ने महाप्रभु का शरीर ठंडा, बहुत कीर्तन करते थे, बहुत परिश्रम होता है, तो जगदानंद ने सोचा महाप्रभु के लिए थोड़ा तेल ला के दो। तो उसने कलकत्ता से मायापुर से एक तेल का घड़ा लेके आए महाप्रभु को सिर पर देने के लिए। जब आए दिया, ये तेल थोड़ा महाप्रभु को दे दो। महाप्रभु को जब पता पड़ा जी ये तेल जगन्नाथ लेके आया मेरे लिए, तो बोला यार तुम एक काम करो, ये तेल जगन्नाथ को दे दो, मैं तो एक सन्यासी हूँ, सन्यासी के नाते ऐसा लगाना नहीं चाहिए, ये बहुत अपराध है। उनको बहुत गुस्सा आए, लेकिन गुस्सा से क्या करेंगे? महापुरुष सिखाया भक्तों को कैसा साधना होना चाहिए। फिर आगे जाके एक दिन महापुरुष ने उनके लिए तकिया बना के दिया, महापुरुष ने वो भी इनकार कर दिया, एक गद्दी बना के दिया महापुरुष ने वो भी इनकार कर दिया, आखिर में किला का छिलका, किला का पत्ता का छिलका नखुन से तोड़ 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 के उसने एक बिस्तर बनाया। जगन्नाथ बाबा ये शिकार नहीं करे तो मैं सुसाइड करूंगा, हाँ? तो मैं सुसाइड करूंगा। फिर बाद में महापुरुष लिखते हैं कि वो शिकार किया था, हाँ? ऐसा कोई 100% सत्य नहीं है। जो भी हो तो ऐसा भक्तों को त्याग भाव होना चाहिए, जब तक ये त्याग ही हमारा साधना है। कलयुग में हम लोग पहाड़ पर्वत गुफा में जाके तो साधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको इतना मौका दिया, इतना मौका दिया, सब सुविधा होते हुए हम लोग इस वंचित होकर दोबारा माया में फंस जाते हैं। आप मैं एक बात करूं, ये बात 72 में दिसंबर महीने में संस्था में ज्वाइन किया, हाँ, 72 में जब वृंदावन मंदिर का काम चालू था, हाँ, तो 72 से मैं अभी तक कितना, हाँ, अभी 17 चल रहा है, इतना तक मैं देख रहा हूँ। मैं मेरा बहुत सारे गुरु भाई है जो इस काम से अलग है, अलग रहते हैं। तो मैं कोई के गुरु भाई को पूछा जो हमारा साथ दीक्षा हुई है, हमको भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या है? हाँ, भावी से उचित छोड़ प्रतिज्ञा जखम, तुम लोग उनको भावना चाहिए था। जब तुम भक्त बने, भक्त बनने के बाद गुरु जी से प्रतिज्ञा किया अग्नि साक्षी रखा, सारे देवता वहां पर आह्वान किया, हवन हुआ, वहां पर बैठ के तुम गुरु से माला लिया और माला लेने के बाद तुम ऐसा करते हो, ये क्या तरीका है? मैं लोगों को पूछा, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए मायापुर में, इधर उधर कहां सर क्या कहीं नहीं किया, लेकिन एक पैसा इस कर्ण को नहीं देते है, सब अपना भोग विलास के लिए। आप लोग को मालूम नहीं है, जब परुवा जी शरीर छोड़ा था उस टाइम मैं परुवा जी का सामने खड़ा था, लोकनाथ महाराज खड़े था, आप हमारा भवानंद था और कोई कोई हमारा सन्यासी था, कमल कृष्ण था, ये सब वहां पर थे था, लेकिन परुवा जी का बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, बहुत तकलीफ। वो जिसने देखा उसको मालूम है, वो देखने से आंखों से पानी गिर जाते हैं, ऐसा दृश्य कोई देख नहीं सके। तो भवानंद महाराज ने नारायण महाराज को प्रश्न पूछा, ये क्या कारण क्या है, परुवा जी को इतना सारा विश्व को इसको तकलीफ इतना क्यों उठाना पड़ रहा है? नारायण महाराज बोल रहा है, ऐसा अंगुली घुमाया सबको ऊपर, ये सबका कारण तुम हो, ये सबके कारण तुम हो। तो वो कैसा भवानंद पूछा, ये कैसा है? परंतु एक बुढ़ा शरीर 70 साल का उम्र में इतना तकलीफ उठाया और तकलीफ का तुम लोग गलत फायदा उठाया। नारायण महाराज ने सही एकदम करेक्ट बताया, गलत फायदा उठाए तुम लोग, सब कुछ भोग विलास में, इसमें उसमें, और इसका बात के ऊपर तुम लोग अच्छा ध्यान नहीं देते, इनका बात तुम लोग ठीक से नहीं पालन करते हैं, जिस कारण सारे भक्तों का ये जो पाप है वो पाप गुरुजी लेते हैं जब उसका दीक्षा होता है। इसीलिए नारायण महाराज अज्ञान तिमरान दस्य ज्ञानंजन सलकया चक्षु उल्लेखन तस्मै श्री गुरु नमो, अर्थात देखिए अभी सूरज निकला, निकलेगा नहीं तो सूरज निकला पूरा अंधकार दूर हो गया, लेकिन हमारा शरीर में जो अंधकार है करोड़ सूर्य उदित होगा तो हमारा मन का अंधकार दूर नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या? आदमी का मन के अंदर जो अंधकार है वो करोड़ सूर्य गगन में उदित हो फिर वो दूर नहीं हो सकता है, लेकिन ये गुरु का वाक्य जिसने अपनाया उसका सारा अंधकार दूर हो गया है। तो ऐसा गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त से करियो ऐक्य आरना करियो मने आशा है। तो गुरु को वाक्य पर निर्भर करके जो भगवान का शरण में आकर भगवान का राय कार्य भजन करे उसको संसार में और कोई है दुख नहीं रह सकता है, लेकिन आज तुम्हारा गुरु इतना तकलीफ उठा रहा है तुम लोग उनके कारण, सावधान हो जाओ तुम लोग सब, सावधान हो जाओ तुम लोग सब, सावधान हो जाओ। ऐसा ही अभी तो परुवा जी तो नहीं रहे, लेकिन हमारा अपना अपना अलग अलग गुरु जैसा लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, भक्ति सानु महाराज, जय पैतरा महाराज, कोई कोई गुरु है उनका सबका गुरु को चेला आप लोग उनके इधर ही है। तो आप लोगों से मेरा विनती है, मेरा प्रार्थना है कि मुझे क्योंकि मायने खुद आंखों से देखा हुआ है परुवा जी का आखिरी शरीर छोड़ने का हाँ। तो हमारा जैसा अधम के कारण गुरु जी को तकलीफ ना उठाना पड़े हाँ। इसीलिए ये प्रार्थना आप लोगों से है, क्योंकि हमारे कारण हमारा गुरु जी को तकलीफ नहीं उठाना पड़े। तो गुरु जी को कैसा तकलीफ, जो नियम दिया है गुरु जी ने, जो हमारा जो आदेश दिया है ये आदेश को हम पंखंड पंखंड रूप में पालन करें तो हमारा गुरु जी को आज तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट गुरु जय समय पहले दिया नारद मुनि का एग्जाम्पल जय मिनी, देखो कितना भी होते हुए गुरु का एक दायित्व तो होता है, इसका संसार बंद से मैं छूट कर लेके आया। वो गुरु जी कभी नहीं, चाहे गोलोक वृंदावन चाहे केदार भी जाए, वो चला को कैसा भी हो साथ में लेना ही चाहता है। तो गुरु जब ऐसा करता है तो हम थोड़ा सा गलती करके गुरु जी को क्यों पाप में डाले हा? ऐसा नहीं करना, ये हमारा आप लोगों से प्रार्थना है। तो आज का जो श्लोक है टाइम के जो भी है, तो मैं ये श्लोक में हमको क्या शिक्षा मिला, श्लोक का शिक्षा क्या मिला हाँ, मृत्यु हमारा पीछे खड़ा है, तो मृत्यु को हमेशा डरना चाहिए। जो मृत्यु को डरता है वो भगवान का शरण में आ जाता है, यही श्लोक का आज का मेन बात है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।